हाउ साइकोलॉजिस्ट स्टडी, यानी कि वो इसका शिक्षण कैसे लेते हैं और क्या क्या इसके अंतर्गत जो है क्रियाएं प्रतिक्रियाएं उन सभी पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप ही के जबान में या फिर कहूँ एक डेफिनेशन हो जाए कि इस टॉपिक को अगर हम इंट्रोड्यूस करना चाहें तो कैसे करेंगे।
देखिए, जब भी हम इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक साइकोलॉजी पढ़ते हैं कि साइकोलॉजी क्या है, तो हम हमेशा उसमें डिस्क्राइब करते हैं कि उसका नेचर क्या है, स्कोप क्या है, एंड इट इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। तो हम पहले भी कई बार इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं कि जब भी हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो बहुत लोग सोचते हैं कि मनोविज्ञान का मतलब है कॉमन सेंस, कि मतलब जो आपको लगता है कि ऐसा होता होगा तो वैसा ही होता होगा, वही मनोवैज्ञानिक पढ़ते हैं। लेकिन टाइम एंड अगेन मैंने ये भी बताया है कि ऐसा नहीं होता है। हम जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स होती हैं या जो भी थ्योरीज बनती हैं, वो थ्योरीज़ का बहुत साइंटिफिक बेसिस होता है। वो थ्योरीज़ इस बेसिस पे नहीं बनती जैसे जिसे हम कहते हैं कि कुछ सुपरस्टिशंस या फिर कुछ कॉमन सेंस के बेसिस पे नहीं बनती हैं। वो प्रॉपर साइकोलॉजिकल रिसर्च कंडक्ट की जाती है टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर, और बेस्ड ऑन दैट रिसर्च वो जो भी हम डाटा कलेक्शन करते हैं, चाहे वो क्वालिटेटिव हो, क्वांटिटेटिव हो, मतलब जिस भी तरह से हम लोगों को पढ़ते हैं, वो एक प्रॉपर साइंटिफिक मैनर में पढ़ के ही हम किसी निष्कर्ष पे आते हैं कि अगर अगर ऐसा व्यक्तित्व है तो इस सिचुएशन में, फॉर एग्जांपल ऐसा व्यक्तित्व है तो इस सिचुएशन में इस तरह से इंडिविजुअल जो है वो बिहेव करेगा, या करेगा। किसी भी तरह का जो हम बिहेवियर प्रिडिक्शन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स करते हैं जो साइंटिफिक रिसर्च होती है।
अच्छा,
बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आजकल लोगों में आ रहा है कि जैसे पॉलिसी मेकर्स में, स्टूडेंट्स में, प्रोफेशनल्स में, बिजनेसमैन में, विमेन में, कि साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन वो समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। वो क्यों है? क्योंकि आज के समय में जैसे स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, जितना ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, तो सब लोग निवारण एक तरह से अपने जो मुसीबतें हैं उनका चाहते हैं। एंड वॉट इज़ इट, आई टाइम एंड अगेन टेल everyone that it is all about your thought process. आप कैसे चीज़ों को ले रहे हैं, कैसे सोचते हैं, कि हर एक चीज़ों को देखने का, हर एक किसी भी सिचुएशन को देखने का दो पहलू होते हैं, दो नज़रिए होते हैं। आपका नज़रिया क्या है वो डिटर्मिन करता है कि आप स्ट्रेस में जाएंगे या आप स्ट्रेस में नहीं जाएंगे,
या ओवरकम कर जाएंगे
या उसको ओवरकम कर जाएंगे, सिचुएशन को किस तरह से लेंगे। और भी बहुत सारी जैसे बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं, जो पहले कहीं ना कहीं लोग वो कहते थे झाड़ फूंक से जो कहीं ठीक करने की कोशिश करते थे, अब वो जितना लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है तो उतना ही वो साइंटिफिक तरीकों से चीज़ों को समझने की और
हील करने की
जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, जिसमें हम बेसिकली ये बताएंगे कि पहले जब हम साइकोलॉजिकल स्टडीज को कंडक्ट करते हैं तो उसका मेन गोल क्या होता है, मतलब हम व्हाट इज द एम विद विच वी आर कंडक्टिंग अ साइकोलॉजिकल रिसर्च। सेकेंड हम लोग बताएंगे दो तरह की रिसर्चेस होती हैं, बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च, तो उसका डिफरेंस क्या है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट मेथड्स क्या हैं जिसके बेसिस पे जो है वो साइकोलॉजिकल स्टडीज को कंडक्ट किया जाता है। फिर है कि आप कौन कौन से स्टेप्स हैं जो, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स। और साथ ही साथ हम इस विषय पे भी चर्चा करेंगे कि जैसे साइकोलॉजिस्ट अगर आपका डाटा कलेक्ट करते हैं, या फिर फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल अगर डिप्रेशन में है या स्ट्रेस में है, तो उनका स्ट्रेस लेवल कितना है और उनका डिप्रेशन लेवल कितना है, उसको जानने के लिए वो बेसिक क्वेश्चंस ऐसे ही अपने मन से बने बनाए क्वेश्चंस पे रिलाई करके डाटा कलेक्ट नहीं करते हैं, प्रॉपर क्वेश्चनियर्स बने होते हैं, कुछ ऐसे टूल्स और टेक्निक्स होती हैं जिसके बेसिस पे डाटा कलेक्ट किया जाता है, और इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को समझने की कोशिश और उसकी प्रॉब्लम की गहराई को समझने की कोशिश जो है वो की जाती है।
अच्छा,
इसके साथ ही हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस किस तरह से हम लोग जो हैं वो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में करते हैं।
बिल्कुल श्वेता मैम, यानी कि कुल मिलाकर एक जो भ्रम है सुपरस्टिशियस की आपने बात की, या फिर अज्यूम या अजम्पशन के ऊपर साइकोलॉजी चलती है, उससे निकलकर आपने बताया कि कैसे साइंटिफिक रीजन से होते हैं। कुछ चीज़ें हम लोग शायद समझ नहीं पाते कॉमनर्स, जैसे ब्रेन मैपिंग की बात की जाती है, या फिर कहा जाता है कि बहुत सारे सेशंस हो रहे हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं चीजें जो हैं वो फैक्ट बेसिस हैं, ना कि अजम्पशंस
नहीं है, वो फैक्ट्स हैं। जो भी थ्योरीज डेवलप की हैं या जो भी आपसे अगर बात भी की जाती है, अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो तो साइकोलॉजिस्ट जब आपकी समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करता है, आपको लगता है वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, इट इज़ नॉट सिंपल टॉक्स, लेकिन वो उनका भी एक बेसिस है किस तरह से बात करनी है, क्या बात करनी है, कौन सी करनी है कौन सी नहीं करनी है, तो देयर आर सेट ट्रेंड्स टू इट। जब हम लोग बात करते हैं कि साइकोलॉजिकल रिसर्चेस हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हम वो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस एक्चुअली में या साइकोलॉजिकल स्टडीज़ क्यों करते हैं। अब किसी भी चीज़ का कोई एक बेसिस होता है, जैसे कि आप कोई दवाई बनाते हैं तो दवाई जो है वो आपके सर दर्द को कम करेगी, या ये खाएंगे तो आपकी सर दर्द कम हो जाएगी, आपकी पेट दर्द खत्म हो जाएगी, तो वो भी एक फिनोमेना है और वो फिनोमेना का एक एम है कि आपका जो है वो आपका जो है पेन से आपको रिलीफ मिल जाएगा। उसी तरह से जो साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं उनका भी अपना एक एम रहता है। तो कोई भी साइंटिफिक स्टडी जो होती है उसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं कि सबसे पहले किसी एक फिनोमेना को डिस्क्राइब किया जाता है। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, मान लीजिए कोई भी किसी भी तरह की महामारी होती है तो पहले उस फिनोमेना को डिस्क्राइब किया जाता है कि ये क्या है, ये किस वजह से हो रहा है। वो कोई भी तरह की ले लीजिए, चाहे डेंगू मलेरिया स्वाइन फ्लू एनीथिंग विच एवर इज हैपनिंग। तो जिस तरह से कोई भी चीज़ को आप अदर साइंसेस में भी डिस्क्राइब करते हैं, उसी तरीके से आप साइकोलॉजी में भी किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। फॉर एग्जांपल एडोलेसेंट बिहेवियर है ना, हम लोग जैसे बात करते हैं कि जो एडोलेसेंट्स होते हैं वो इस तरह से बिहेव क्यों करते हैं, तो एडोलेसेंट बिहेवियर का फिनोमेना पहले हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि वो ऐसा ऐसा है, बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे खाते पीते हैं, ऐसे घूमते फिरते हैं, इस तरह की सोसाइटी में रहते हैं। फिर हम लोग जब डिस्क्राइब कर लिया एक बार फिनोमेना, फिर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे उस फिनोमेना को, एक्सप्लेन करेंगे कि अगर ये ऐसा हो रहा है तो ये ऐसा जो है वो क्यों हो रहा है, उसके क्या क्या रीजंस हैं, क्या वो पीयर प्रेशर है, क्या वो सोशल स्टेटस है, या क्या वो आपके पर्सनालिटी में आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, या कुछ भी। मतलब एक एग्जांपल लेके चल रही हूँ कि अगर हम एडोलेसेंट फिनोमेना की बात करें तो पहले तो किसी भी साइंटिफिक रिसर्च की तरह उसको डिस्क्राइब किया जाएगा, फिर किसी भी साइंटिफिक रिसर्च की तरह उसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड सच अ बिहेवियर। उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन के बाद प्रिडिक्ट करते हैं। प्रिडिक्शन एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होता है इन साइंटिफिक रिसर्चेस एज वेल एज इन साइकोलॉजिकल रिसर्चेस विच आर साइंटिफिक। तो उसमें भी प्रिडिक्शन करेंगे कि अगर बच्चों पे पीयर प्रेशर ज़्यादा आएगा और उनको ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम के इश्यूज होंगे तो दैट मीन्स वो प्रेशर के टाइम पे गिवन कर जाएंगे, मतलब जो भी उनके साथ वाले सही या गलत उनको करने के लिए कह रहे हैं वो अपना दिमाग नहीं लगा के वही चीज को कर लेके, कुछ भी चीज हो, अब बेशक वो बुरी आदत हो। तो वी आर प्रिडिक्टिंग अ फिनोमेना बेस्ड ऑन द एक्सप्लेनेशन एंड द डिस्क्रिप्शन दैट वी हैव गिवन फॉर अ पर्टिकुलर फिनोमेना, एंड द फिनोमेना इज एडोलेसेंट बिहेवियर। एडोलेसेंट्स इस तरह से बिहेव करते हैं, उसका रीजन ये होता है, और अगर उसका रीजन ये होता है तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी भी सिचुएशन में किस तरह से वो बिहेव करेंगे। तो ये है कि साइंटिफिक रिसर्चेस में जिस तरह से डिस्क्राइब करते हैं फिनोमेना को, एक्सप्लेन करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं, उसी तरह से हम साइकोलॉजिकल रिसर्चेस को भी करते हैं। और मेन इसका गोल ये होता है कि जब हमको ये सारा फिनोमेना का समझ आ गया तो हाउ कैन वी कंट्रोल दिस फिनोमेना। अब हम इस चीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, एडोलेसेंट्स का अगर कोई माल अडेप्टिव बिहेवियर है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या क्या जो है अपने प्रयास जो है वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको समझ आ गया कि स्वाइन फ्लू किस वजह से हो रहा है, सर्दी के मौसम में होगा, तो आप उसकी एक मेडिसिन या उसके प्रिकॉशनरी चीजें लेके आएंगे। उसी तरह से जब आपको पता चल गया कि एडोलेसेंट बिहेवियर इस तरह का है, उसके रीजंस ये हैं, और अगर हमने प्रिडिक्ट भी कर लिया कि पीयर प्रेशर में आके बच्चे कुछ भी गलत काम कर सकते हैं, तो अब हमारा काम है कि उस चीज को कंट्रोल करना। तो गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च यही है कि किस तरह से आप साइंटिफिकली किसी भी बिहेवियर को या किसी भी फिनोमिना को डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और उस फिनोमिना उसके बेसिस पे प्रिडिक्ट करेंगे कि सिचुएशन क्या हो सकती है फ्यूचर में और उसको कैसे कंट्रोल किया जाए,
कैसे कंट्रोल किया जाए.
तो यही जो हमारा गोल है साइकोलॉजिकल स्टडीज का, रिसर्चर्स का मेन यही रहता है कि किसी भी फिनोमिना को एक्सप्लेन करना और उसके बाद उसको कंट्रोल कैसे
कंट्रोल किया. यानी कि देखा जाए अगर हम मोटे मोटे शब्दों में कहें मैम कि, तो पहले एक स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं कि आइडियली सिचुएशन ये है या ऐसी ब्रेन की हो सकती है, और फिर उस आइडियल सिचुएशन को जानने के बाद ये होता है कि अब बच्चा जो है अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहा है तो दैट मीन्स ही इज परफेक्टली फाइन. अगर उसके अपोजिट थोड़ा सा बिहेवियर पाया जाता है तो फिर जैसा कि आपने कहा उस पर जो है आप साइकोलॉजिस्ट
हैं. कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना सा है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि किसी के लव्ड वन, somebody lost his or her loved one किसी भी तरह से, तो अब वो स्ट्रेस में आएगा. अब उसके स्ट्रेस में आने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि एक्सप्लेन द फिनोमेना, डिस्क्राइब द फिनोमेना, एक्सप्लेन द फिनोमेना. स्ट्रेस क्यों है, क्या है स्ट्रेस है, क्या क्या उसकी सिम्टम्स है, एक्सप्लेन करो कि वो क्यों आया है. क्योंकि somebody lost someone very close. अब उसके बाद प्रिडिक्ट करो, प्रिडिक्ट इज दैट दैट पर्सन विल बी मिसिंग दैट पर्सन ऑल द टाइम एंड विल बी इन टीयर्स और विल बी सैडन्ड बाय द मेयर थॉट ऑफ इंडिविजुअल. अब जब आप ये सब चीजें कर लेते हो तो उसके बाद हाउ कैन यू कंट्रोल दिस? यू कैन कंट्रोल दिस विद वैरायटी ऑफ यू नो साइकोलॉजिकल थेरेपीज दैट आर अवेलेबल. वो बहुत सारी हैं, नंबर ऑफ इट. तो आप उनके थ्रू किस तरह से उस फिनोमेना को, उस बिहेवियर को कंट्रोल करते
कंट्रोल कर
तो आप ये सब कुछ एक साइंटिफिक मैनर में स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर में कर रहे हो. और इसका बेसिक एम यही है कि आप The only thing is how can you help someone.
अच्छा मैम, इसी में मैं आपसे आगे पूछना चाहूंगी कि अगर हम बात करते हैं कि चलिए ये तो साइकोलॉजी के बेसिक्स हैं, हम सभी जानते हैं, लेकिन जब वो टाइम आता है कि अब हमने उसे अप्लाई करना है, रिसर्च के लिए अप्लाई करना है, तो तब आप क्या उसमें डिफरेंस पाते हैं?
देखिए, जब हम साइकोलॉजी की रिसर्चेस की बात करते हैं तो दो तरह की रिसर्चेस हम करते हैं. एक है बेसिक रिसर्च एंड एक है अप्लाइड रिसर्च, या बेसिक साइकोलॉजी, अप्लाइड साइकोलॉजी. इसका डिफरेंस सिर्फ इतना आता है कि जो बेसिक साइकोलॉजी है इट इज़ डीलिंग विद दी, जैसे कि आप कुछ थ्योरीज बनाएंगे अकेडमिकली, जितना भी काम आप लोग करेंगे.
अच्छा.
उसे हम कहेंगे द बेसिक रिसर्च. और अप्लाइड रिसर्चेस होती हैं जो किसी फिनोमेना को कंट्रोल, आपने कोई टेक्निक सीख ली और आप उस टेक्निक को अप्लाई कर रहे हैं, तो दैट इज बेसिक रिसर्च एंड अप्लाइड रिसर्च. बेसिक रिसर्च इज द बेसिस फॉर अप्लाइंग समथिंग इन द रियल सिचुएशन. आपने जैसे कि जितना भी थ्योरीज बना है या जितना लोग अकेडमिकली काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द बेसिक रिसर्च एंड दे आर अप्लाइंग दैट रिसर्च इन डिफरेंट एरियाज.
इट्स जस्ट लाइक प्रैक्टिकल.
हाँ, प्रैक्टिकल. अप्लाइड रिसर्च इज लाइक प्रैक्टिकल. जैसे आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और साइकोलॉजिस्ट आपको, जैसे आप कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, तो दैट इज बेसिक.
थ्योरी एग्जाम होता है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम.
थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्जाम होता है. तो जो इंडिविजुअल आपको पढ़ा रहे हैं, दे आर ट्रेन्ड इन देयर इन टीचिंग एंड इन यू नो रिपोर्टिंग एंड आप उसे कह सकते हो वो डिफरेंट तरह के एकेडमिक वर्क करते हैं. दैट इज बेसिक. एंड द अप्लाइड इज जैसे आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे या काउंसिलिंग साइकोलॉजिस्ट के पास जाओगे, तो दे विल यूज सर्टेन काइंड ऑफ स्ट्रैटेजीज टू डील विद योर सिचुएशन. द टीचर विल टेल यू दोज स्ट्रैटेजीज, बट टीचर विल नॉट एक्चुअली अप्लाई दोज स्ट्रैटेजीज ऑन यू. तो वो बेसिक रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च का डिफरेंस
हो जाता है. अच्छा. और यही मैम, अगर हम जो वर्ड सुनते हैं साइकोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ, एक्सपेरिमेंटल मेथड,
हाँ जी,
वो क्या है?
अगर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करें, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हम लोग साइकोलॉजिकल फिनोमेना को स्टडी करने की कोशिश करते हैं. जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में एक्सपेरिमेंट वो है जो ऑब्जर्वेशन अंडर कंडीशंस विच कैन बी कंट्रोल एंड वेरी. मतलब आप किसी एक सेट कंडीशंस में कोई एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उनको कंडक्ट कर रहे हैं.
अच्छा.
जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं तो दिस मेथड इज जनरली प्रेफर्ड ओवर ऑल अदर मेथड्स, जो भी हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड है या कोई और भी केस स्टडी है या कुछ भी है, उसके ऊपर हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को सबसे ऊपर जो है सर्वोपरि जो है वो मानते हैं, क्योंकि इसमें हम कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। जो एक्सपेरिमेंटर होते हैं वो ज्यादातर इस बात से कंसर्न होता है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन दी चेंजेस इन दी एंटीसिडेंट्स कंडीशन, मतलब वही जो मैंने कहा कॉज एंड इफेक्ट, क्या कोई चीज किस वजह से हो रही है, व्हाट इज द कॉज बिहाइंड समथिंग व्हिच इज हैपनिंग, तो कॉज एंड इफेक्ट की बात करते हैं। जब भी हम अगर आप इसको ज़्यादा उससे समझना चाहें कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड कैसे कंडक्ट करते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे आप ये देखो कि अगर कोई टीचर ये जानना चाहता है कि जो रिसाइटेशन मेथड है वो आपका रिटेंशन को कितना हेल्प करेगा, मतलब आप बार बार कोई चीज़ जो है रिपीट करते हो तो वो आपका जो रिटेंशन लेवल है, आपकी याद करने की क्षमता है, वो उसको कितना इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, रिसाइटेशन मेथड जो है वो कॉज है और उसका इफेक्ट आ रहा है आपकी रिटेंशन पे। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, तो उसमें क्या होगा कि हाइपोथेसिस जो है वो एक टीचर बनाएगा, जो भी है रिसर्चर बनाएगा, वो बोलेगा कि फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस का मतलब होता है वो एक एज्यूम्ड सॉल्यूशन होता है टुवर्ड्स अ क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कि अगर हम बार बार रिपीट करके कोई चीज़ को याद करने की कोशिश करेंगे, जैसे बच्चे टेबल्स हम लोग बचपन में याद करते थे, टेबल का ऐसा कोई एसच देयर इज नो मीनिंग ऐसा नहीं है, बट टेबल है। अब टेबल याद करना है तो टेबल याद करने के लिए हम 2 1 2 2 2 4 2 3 6 बार बार उसको रिपीट करते थे, तो रिपीट करने से हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। जैसे कि हम कोई भी किताब से एनीथिंग, जो आप रोज प्रेयर्स करते हो, कुछ भी करते हो, आप जितना ज्यादा उस चीज को रिपीट करते हो वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो रेपिटिशन हैज एन इफेक्ट ऑन योर रिटेंशन। तो जैसे अगर हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, तो टीचर का एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि हैज अ क्वेश्चन और प्रॉब्लम विच इज रिसाइटेशन मेथड ऑन दी अदर हैज टू बी एक्सप्लोर्ड। रिसाइटेशन मेथड का इफेक्ट जो है वो हमारे को रिटेंशन पे देखना है कितना होता है।
अच्छा।
तो प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे एक्सपेरिमेंटर एक हाइपोथेसिस बना लेगा, उस हाइपोथेसिस के बेसिस पे टीचर ये स्टेट करेगा कि डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स जो हैं वो टीचर स्टेट करेंगे। She may hypothesize that recitation method is better for retention of poem. To verify hypothesis, she will undertake an experiment. कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग hypothesis की बात करते हैं, जब हम experimental method की बात करते हैं, experimental method को conduct करने के लिए हम लोग hypothesis से शुरू करते हैं।
अच्छा,
ठीक है। तो hypothesis का मतलब है कि हम एक assumption बनाते हैं कि अगर बच्चा बार बार रिपीट करेगा तो उसका रिटेंशन, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एग्जांपल ये है कि अगर आप बार बार किसी चीज को रिपीट करेंगे तो आपकी मेमोराइजेशन ज्यादा अच्छी होगी, एक हाइपोथेसिस। दूसरा हाइपोथेसिस मैं ये बना देती हूँ कि रिपीट करने की जगह अगर आप किसी चीज को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका रिसाइटेशन ज्यादा अच्छा होगा। दो हाइपोथेसिस मैंने बना ली। अब मुझे इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है कि कौन सी वाली ट्रू है, पहले वाली बार बार
बोलने वाली
बोलकर रिटेन करने वाली ज्यादा सही है या दूसरी वाली ज्यादा सही है, समझ के चीजों को करने वाली ज्यादा सही है। तो इसके लिए मैं एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करूंगी। एक्सपेरिमेंट जब मैं कंडक्ट करूंगी, हाइपोथेसिस पहला आ गया फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस, दूसरा आया कि आप लोग आइडेंटिफाई करोगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द कॉज एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज द इफेक्ट। कहने का मतलब ये है आप जितना ज्यादा किसी चीज को रिपीट करोगे वो चीज आपकी मेमोरी को एनहेंस करेगी, रिटेंशन को एनहेंस करेगी। तो रेपिटिशन इज कॉज एंड इट इज इफेक्टिंग योर रिटेंशन इज द इफेक्ट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ जो आप रिपीट कर रहे हैं, जो कॉज है।
अच्छा।
और उसका इफेक्ट आ रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल पे। अब जो आपका रिटेंशन है वो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी बार कोई चीज पढ़ रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हो सकता है कि एक एक चीज़ बोलने से पहले मैं बताऊंगी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ऑलवेज इन द कंट्रोल ऑफ एक्सपेरिमेंटर. एक्सपेरिमेंटर उसकी डिग्री कितनी भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है.
अच्छा.
और चाहे उसको दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है. हमको ये पढ़ना है कि उसका इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या हो
क्या होगा.
जैसे कि मैं दो लोगों को ले लेती हूँ. अब मैंने दो लोगों में से किसी एक को सरदर्द की दवाई दी और मैंने ये देखा उसका क्या असर हुआ उसके
रिलैक्सेशन.
ठीक है. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज मेडिसिन एंड डिपेंडेंट वेरिएबल इज रिलैक्सेशन. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे कंट्रोल में है. मैं चाहूँ तो पूरी गोली दूँ, मैं चाहूँ तो आधी गोली दूँ. फिर मैं देखूँ कि पूरी गोली का कितना इफेक्ट होता है, आधी गोली का कितना इफेक्ट होता है. मैं चाहूँ तो कुछ भी ना दूँ. तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी कंट्रोल्ड बाय द एक्सपेरिमेंटर एंड इट हैज एन इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल. तो हम लोग जब भी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस करते हैं तो उसमें हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को समझते हैं. फिर आता है कि हम लोग सैम्पलिंग कैसे करते हैं पार्टिसिपेंट्स की. अब सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि जैसे आपने बहुत सारी रिसर्चेस जो हैं वो आप कंडक्ट करते हो, तो हम लोग पूरी दुनिया के सभी लोगों को लेके तो रिसर्च नहीं कर सकते. ठीक है. हम सैम्पल ऑफ पीपल लेते हैं. जैसे कि आप अगर मान लीजिए आप किसी कुकरी कंपटीशन में जाते हैं और आप जज हो, तो जब आप जज हो तो आप हर एक इंसान की पूरी पूरी डिश तो नहीं खा पाओगे. आप एक सैंपल लेके खाओगे और उस सैंपल से ही आप पता लगाओगे, जनरलाइज करोगे कि इसकी पूरी डिश ऐसी बनी होगी. उसी तरह से सैंपलिंग जो है पार्टिसिपेंट्स की हम साइकोलॉजिकल रिसर्चेस में भी करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं ये जानना चाहती हूँ कि 10वीं क्लास के बच्चों का जनरली आईक्यू लेवल कितना होना चाहिए.
अच्छा.
तो उस स्टैंडर्ड को बनाने के लिए मैं पूरे इंडिया के 10th क्लास के बच्चों का एक एक बच्चे का मैं टेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकती. तो मैं क्या करूंगी कि मैं सैंपल ऑफ स्टूडेंट्स ले लूंगी. मतलब कुछ स्टूडेंट्स मैंने नॉर्थ के 10th क्लास के ले लिए, मतलब जैसे नॉर्थ के 4 रीजन से मैंने 10th क्लास के स्टूडेंट्स ले लिए. थोड़े से 100 स्टूडेंट्स मैंने नॉर्थ से ले लिए, 100 स्टूडेंट्स मैंने वेस्ट से ले लिए, 100 ईस्ट से ले लिए और 100
साउथ
से ले लिए. मतलब टोटल मैंने 400 स्टूडेंट्स ले लिए और 400 स्टूडेंट्स से जो मैंने डाटा कलेक्ट किया उसके बेसिस, वो मेरा सैंपल हो गया. और उसके बेसिस पे मैंने बता दिया कि जनरली 10वीं क्लास के बच्चों का ये आईक्यू लेवल जो है वो होना चाहिए. तो जब हम एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं तो उसमें हम लोग पहले हाइपोथेसिस फ्रेम करेंगे, फिर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर हम लोग सैंपलिंग करेंगे पार्टिसिपेंट्स की कि कौन से हमारे पार्टिसिपेंट स्टडी में आने चाहिए. फिर हम लोग एक चीज करते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज नोन एज कंट्रोल ऑफ एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स. बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि हम लोगों ने पहला एग्जांपल लिया था कि रिसाइटेशन मेथड का कितना इन्फ्लुएंस है आपका रिकॉल का, कितना इन्फ्लुएंस है आपका रिटेंशन पे. या फिर अगर हम लोग बात करें आईक्यू लेवल कि इन जनरल आईक्यू लेवल बच्चों का कितना होना चाहिए, तो इसमें क्या है कि कुछ एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स होते हैं जो हमारे स्टडी को इफेक्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं पहला वाला एग्जांपल लूँ जिसमें मैंने बात करा था कि आप जितना ज़्यादा चीज़ को रिपीट करेंगे उतना आपका रिटेंशन अच्छा होगा, लेकिन इसमें एक्सट्रीनियस वेरिएबल क्या आ सकता है, आप कहीं पर रिपीट कर रहे हैं तो मान लीजिए आप रिपीट कर रहे हैं बहुत शांति वाले वातावरण में तो आपका रिटेंशन अच्छा है.
अच्छा.
आपकी जो फ्रेंड है वो भी उतना ही रिपीट कर रही है लेकिन वो बहुत नॉइजी सिचुएशन में रिपीट कर रही है, तो आपके जितना ही मेहनत की उसने लेकिन उसका रिटेंशन इतना अच्छा नहीं हुआ. बिकॉज जो नॉइज है, नॉइज इज एन एक्सट्रीनियस वेरिएबल, वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है उसे. ठीक है. तो एक्सपेरिमेंटल जो मेथड होता है उसमें हम जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल्स हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं. उसको कंट्रोल करने के डिफरेंट तरीके होते हैं. पहला तरीका है मैचिंग. मैचिंग का मतलब है पार्टिसिपेंट्स आर मैच्ड ऑन ऑल देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. मतलब जैसे कि मान लीजिए जब हम लोग बात करेंगे रिटेंशन मेथड की, तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हम किस लेवल के बच्चे ले रहे हैं. हम ऐसा नहीं हो सकता कि एक 10 साल का बच्चा ले ले और एक 5 साल का बच्चा ले रहे हैं, क्योंकि दोनों के एज ग्रुप की वजह से दोनों की कैपेबिलिटी में डिफरेंस होगा. ठीक है. तो अगर मैं ये बोलूँ कि 10 साल के बच्चे की रिटेंशन ज़्यादा हो गई और 5 साल के बच्चे की कम हो गई तो गलत होगा. तो इसमें एज जो है वो एक एक्सट्रीनियस वेरिएबल है, तो उस वेरिएबल को कंट्रोल करने के लिए मैं मैचिंग कर दूंगी. मैचिंग का मतलब है मैं एक ही एज ग्रुप के बच्चे लूंगी, सो दैट मुझे पता चले कि एज ग्रुप इज नॉट इफेक्टिंग दी वेरिएबल्स अंडर स्टडी एट ऑल. वेरिएबल इज रिटेंशन एंड दी रिकॉल मेथड. सेकेंड आ रहा है एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब है कुछ चीजों को हम बिल्कुल एलिमिनेट कर सकते हैं. अच्छा. जैसे कि जो एक्सट्रीनियस वेरिएबल होती है, जैसे कि नॉइस. मैंने आपको कहा कि कहीं पे नॉइज है, तो हम उसको टोटली एलिमिनेट कर सकते हैं कि वो नॉइजी सिचुएशन से उस इंडिविजुअल को नॉइज या तो बिल्कुल ही खत्म कर दो या कांस्टेंट कर दो कंडीशन. एक भी नॉइज में लर्न कर रहा है, दूसरा भी. ठीक है, तो एक्सट्रीनियस वेरिएबल का कोई इफेक्ट जो है वो एज सच नहीं है.
कंडीशन सेम हो
दैट इज नोन एज कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशन. वो एनदर मेथड है ऑफ कंट्रोलिंग दी एक्सट्रीनियस वेरिएबल. फिर आता है कि जब भी हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेथड की बात करते हैं तो हमारे को प्लान या डिजाइन करना होता है अपना एक्सपेरिमेंट. उसमें क्या करते हैं, द एक्सपेरिमेंटल विल सिलेक्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड डिवाइड देम इन हाफ एंड गिव देम सेम मटेरियल. फॉर एग्जांपल पोइम. हम जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 10 बच्चे ले लिए, तो 10 बच्चों में से 5 को एक तरफ रखूंगी, 5 को एक ग्रुप में रखूंगी, 5 को दूसरे ग्रुप में रखूंगी. अब इसमें दोनों बच्चों को मैं सेम मटेरियल दूंगी विच इज पोइम. आपको कोई भी पोइम याद करनी है, लेकिन एक वाला जो ग्रुप है उसको मैं ये बता दूंगी कि आपको किस तरह से जो मटेरियल है उसको साइलेंटली पढ़ना है, और इस ग्रुप को मैं बोल दूंगी कंट्रोल ग्रुप, और जो दूसरा ग्रुप है उसको मैं बोलूंगी आप जोर जोर से पढ़ो. तो अब मैं इस चीज को नोटिस करूंगी कि रिटेंशन दोनों ग्रुप्स में सेम हुआ या डिफरेंट हुआ. जैसे हम कई बार बोलते हैं ना, जोर जोर से बोल के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होगा, धीरे पढ़ोगे तो नहीं होगा. तो अब मैंने क्या किया कि मैंने जब अपना एक्सपेरिमेंट प्लान करना है तो मैंने दो ग्रुप्स बना दिए, एक कंट्रोल ग्रुप और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप. एक को मैंने कहा कि आप बिल्कुल धीरे से पढ़ोगे, दूसरे को मैंने कहा कि आप जोर जोर से रिसाइट करके पढ़ोगे. तो अब मैं कंपेयर करूंगी कि रिसाइटेशन जितना लाउडली हुआ तो उसका इफेक्ट लर्निंग पे कितना हुआ, और जो साइलेंटली हुआ तो उसका इफेक्ट लर्निंग पे कितना हुआ. तो आई विल डिवाइड माई सैम्पल इंटू 2 इक्वल ग्रुप सो दैट आई कैन कंपेयर देम. फिर हम लोग करेंगे अपनी हाइपोथेसिस को वेरीफाई करेंगे. वेरीफाई करने का मतलब है, अगर मैंने हाइपोथेसिस बनाई थी कि जोर जोर से रिकॉल करने पे आपका रिटेंशन ज्यादा होगा, तो जब मैंने दोनों ग्रुप्स को कंपेयर किया तो क्या ये चीज प्रूव हुई या ये नहीं हुई. तो मैं अपनी हाइपोथेसिस को यहाँ पे वेरीफाई करूंगी. अगर प्रूव हुई तो सही है, अगर नहीं प्रूव हुई तो फिर मैं उसके सारे लॉजिक्स दूंगी कि क्यों ये चीज प्रूव नहीं हुई.
बिल्कुल.
फिर कुछ लिमिटेशंस होती हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड की, जैसे कि साइंटिफिक डाटा को कलेक्ट करने की. जैसे जो भी फाइंडिंग्स आप ऑब्टेन करते हो वो फाइंडिंग्स को आप नेचुरल सिचुएशंस पे नहीं ला सकते, क्योंकि नेचुरल सिचुएशन जैसे आपने तो एक बंद दरवाजे में या कमरे में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, लेकिन अगर उसी चीज को आप नेचुरल सेटिंग में करना चाहोगे तो देर आर लॉट मेनी वेरिएबल्स दैट यू विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल. जैसे नॉइज है, पोल्यूशन है, लाइट है, वेदर है, उन सब चीजों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते. तो वो नेचुरल कंडीशंस में वो उतना सही रिजल्ट नहीं आता. कई बार क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो अनएथिकल और डेंजरस भी हो जाते हैं. जैसे कि आप कई बार ऐसा होता है कि उनको आप स्ट्रिक्ट होते हो, किस तरह के एनवायरनमेंट में उनसे एक्सपेरिमेंट करवाते हो सब्जेक्ट से, ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. और कई बार जो एक्सपेरिमेंट होता है वो इंटरफेयर करता है बिहेवियर, जो आपका बिहेवियर होता है जो दैट इज अंडर स्टडी. तो ये सब चीज़ें जो है हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड में रहती हैं.
थोड़ी सी चर्चा नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड पर भी हो जाए.
देखिए, जब हम साइकोलॉजिकल रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने कहा कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड को जो है वो सर्वोपरि मानते हैं, कि हम प्रेफर करते हैं कि हम एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही साइकोलॉजिकल रिसर्चेस को कंडक्ट करें. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज पॉसिबल, क्योंकि जैसे मैंने कहा उसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर कभी क्राउड में आप लोग हैं तो क्राउड का बिहेवियर समझने के लिए सारे क्राउड को आप लेबॉरेटरी में तो नहीं लेके आ सकते. तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो हैं वो हमारे एक्सपेरिमेंटल मेथड के साथ रहती हैं. तो उसके लिए हम नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स यूज़ करते हैं, जिसमें पहला आता है ऑब्जर्वेशनल मेथड. ऑब्जर्वेशनल मेथड को हम लोग नेचुरलिस्टिक स्टडीज़ या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग ये स्टडीज़ जो हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट में जाके करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप ये समझना चाहते हैं कि मार्केट में लोग किस तरह के जो हैं वो वेस्टर्न आउटफिट ज़्यादा पहनते हैं या इंडियन आउटफिट ज़्यादा पहनते हैं, या वो किस तरह से बिहेव करते हैं जब वो क्राउड में होते हैं। तो इस फिनोमिना को ऑब्जर्व करने के लिए आप इसको नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करेंगे, और जब नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व करेंगे तो आपको बाहर जाके ये फिनोमिना जो है वो पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए इसे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। ये जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं इन्हें हम पार्टिसिपेंट या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जो भी रिसर्चर स्टडी कर रहा है, द रिसर्चर हिमसेल्फ और हरसेल्फ बिकम्स द पार्ट ऑफ द ग्रुप। जैसे कि वो उस ग्रुप में जाके उसी तरह से क्राउड की तरह से बिहेव करके समझना चाहेगा एंटायर फिनोमेना को। तो वो हो गया पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया जिसमें आप किसी एक दूर से रह के या विदाउट बिकमिंग अ पार्टिसिपेंट टू द स्टडी यू ट्राई टू ऑब्जर्व द फिनोमेना। अच्छा। फिर आता है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है टू लुक विद इन, जैसे कि हम अपने आप अंदर झांकने की कोशिश करते हैं, दैट इज अगेन इंट्रोस्पेक्शन। कि आप अपने आप को समझो, हाउ अवेयर यू आर अबाउट योरसेल्फ, आप में क्या चेंजेस आप कर सकते हो, आप अपनी सारी डिजायर्स को, अटेंशन को इन्वर्ट करो। तो दैट इज अगेन अ नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड टू स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर। फिर आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड होता है जैसे कि आप सोशल प्रॉब्लम्स, जैसे कि अल्कोहलिज्म है या फिर कुछ भी चीज़ है, क्या पॉपुलैरिटी है करियर की, या आजकल जैसे क्लीनिंग लोग अपनी कितना अवेयर हैं, इन सब चीज़ों के लिए सर्वेस कंडक्ट किए जाते हैं। तो वो सर्वेस के बेसिस पे हमको जानकारी मिलती है कि क्या ट्रेंड्स हैं, लोगों का बिहेवियर क्या है, किस तरह का है। तो जैसे कि मैं इसमें हमेशा एक एग्जाम्पल देती हूँ, एग्जिट पोल्स का।
अच्छा।
एग्जिट पोल्स हम लोग करते हैं तो उससे क्या पता, एक सर्वे कंडक्ट करते हैं ना, तो उससे पता चलता है कि ट्रेंड किस तरफ जा रहा है,
रुझान की जो
रुझान, हाँ, बिहेवियर किस तरफ जा रहा है, क्यों है ऐसा बिहेवियर। तो दीज आर कॉल्ड द सर्वे मेथड्स टू कलेक्ट द डाटा। फिर आता है एक मेथड जिसे हम कहते हैं केस हिस्ट्री मेथड। केस हिस्ट्री मेथड का मतलब होता है कि आपके पास कोई इंडिविजुअल आया है तो आप उसका पूरा, आप उसकी स्ट्रेस लेवल को या डिप्रेशन को समझने के लिए पूरा केस हिस्ट्री लोगे, जिसमें आप उसकी फैमिली से, फ्रेंड से, इंडिविजुअल से, अपने आप पूरा उसका स्टडी करोगे, चाइल्डहुड से लेके जब तक भी उसकी प्रॉब्लम्स रही हैं, हर एक एस्पेक्ट, उनकी डायरीज को, स्कूल टीचर्स या जिसको भी आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो उनका केस हिस्ट्री लेके फिनोमेना समझने की कोशिश करोगे और उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। दिस इज केस हिस्ट्री मेथड, विच इज अगेन अ नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड। देन कम्स दी कोरिलेशनल रिसर्च। कोरिलेशनल रिसर्च का मतलब है कि हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं बिटवीन टू सेट्स ऑफ फैक्टर्स और वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रिक्रिएशन ज्यादा होगा, जितना आप रिक्रिएशन करोगे तो आपका हैप्पीनेस इंक्रीज करेगा, ऐसा है या नहीं है? जितना आपका रिक्रिएशन ज्यादा होगा उतना आपका स्ट्रेस लेवल डाउन आएगा। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्रिएशन एंड स्ट्रेस? देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्रिएशन एंड द रिक्रिएशन एंड हैप्पीनेस? देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो ये है कोरिलेशन बिटवीन टू थिंग्स। तो कोरिलेशन की वैल्यू जो होती है वो -1 to +1 के बीच में आती है।
अच्छा।
या तो किसी का रिलेशनशिप माइनस, जब हम वो कोरिलेशन का मेथड लगाते हैं और वो डाटा कलेक्ट करके जिस भी तरह से हम लोग वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो जो आंसर्स आते हैं वो -1 की रेंज से लेके +1 तक आते हैं। इससे ऊपर नीचे कोई वैल्यू जो है वो नहीं आती। -1, 0 to +1 ये वैल्यू आती है और उसके बेसिस पे हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। तो ये हुआ हमारा नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड।
बिल्कुल मैम, समय तो बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं चलते चलते आपसे ये भी जानना चाहूँगी, साइकोलॉजी की बात हो रही है और एक्सपेरिमेंटल मेथड पे बात हुई, नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड पर बात हुई, अब एक साइकोलॉजिस्ट जो है उसके टूल्स की अगर मैं बात करूँ, अगर वो रिसर्च कर रहा है तो वो क्या क्या रहते हैं?
देखिए, एक तो है क्वेश्चनियर और इंटरव्यू शेड्यूल्स। आप जैसे कि हम लोग कई बार बात करते हैं कि किस तरह से साइकोलॉजिस्ट ने हमसे क्वेश्चंस पूछे, तो जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं दे आर बेस्ड ऑन अ क्वेश्चनियर। वो उस क्वेश्चन ईयर के बेसिस पे, वो एक सेट क्वेश्चन ईयर, स्टैंडर्डाइज्ड क्वेश्चन ईयर होता है, उसके बेसिस पे वो कुछ क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उसके बेसिस पे आपसे जो आपका डाटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और उसके बेसिस पे जो आपका रिपोर्ट्स आएगा, जो आपकी जैसे आप लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपका ब्लड टेस्ट करेगा या डॉक्टर आपकी कुछ भी एक्सरे करेगा तो उस पर रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट के बेसिस पे आपको वो दे देंगे. उसी तरह से जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्वेश्चन ईयर के बेसिस पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा.
अच्छा.
ठीक है. उसके बेसिस पे डाटा कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करके इंटरव्यूज जो भी आपके लेंगे कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है. एक टूल होता है क्वेश्चन ईयर. दूसरा टूल होता है साइकोमेट्रिक टेस्ट. साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है कि जैसे आपका आपने इंटेलिजेंस टेस्ट सुना होगा क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट सुना होगा, तो जैसे आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर देंगे, एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आपका आपने एप्टीट्यूड टेस्ट अपना कंडक्ट करवा लिया, फिर उसके बेसिस पे जो रिपोर्ट आएगी आपको बता देंगे कि देखिए आप इस वाले जो जो आपका करियर है, यू कैन बी अ टीचर और यू कैन नॉट बी अ टीचर, यू कैन बी अ डॉक्टर और यू कैन नॉट बी अ डॉक्टर, यू कैन बी एन इंजीनियर. तो वो आपका जो एप्टीट्यूड, जो साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हमने आपका किया, वो जो एप्टीट्यूड टेस्ट किया या जो इंटेलिजेंस स्कोर आया उसके बेसिस पे जो डाटा आता है, तो दैट इज अगेन अ टूल फॉर कलेक्टिंग द डाटा विच इज साइकोमेट्रिक टेस्ट. फिर आता है प्रोजेक्टिव टेस्ट और टेक्निक. प्रोजेक्टिव टेस्ट और टेक्निक क्या होता है, जैसे कि कई बार आप लोग कुछ ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जॉब्स के लिए जिसमें क्या करते हैं कि आपको एक पिक्चर दे दी जाएगी और वो कोई भी रैंडम पिक्चर होगी, आपको बोलेंगे इस पे आप अपनी स्टोरी लिखो.
अच्छा.
अब आप वो स्टोरी का क्या कंटेंट लिखते हो उसके बेसिस पे आपकी पर्सनालिटी को असेस करने की कोशिश की जाएगी. तो या फिर आपको वर्ड, आपने कभी फ्रेगमेंट वर्ड सुना होगा या वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई से लव एंड यू से मदर, सो दैट इज कि वॉट इज हाउ आर यू एसोसिएटिंग बेस्ड ऑन योर द कॉन्टेंट विच यू आर प्रेजेंटिंग. ये कहते हैं प्रोजेक्टिव टेस्ट टेक्निक्स. तो इसके बेसिस पे भी डाटा कलेक्ट किया जाता है. मतलब टूल्स का मतलब है किस तरह से हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं. ठीक है. फिर उसमें जैसे टैट मैंने आपको बताया, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट जिसमें पिक्चर्स के बेसिस पे करते हैं, इंक ब्लॉक टेस्ट. इंक ब्लॉक होता है कि ब्लॉट टेस्ट होता है कि इंक ब्लॉट बनाया जाता है और आपको ये बताया जाता है कुछ इंक ब्लॉट्स बने हैं कि आप इसमें कौन सी इमेज जो है वो
फिक्स करते हो.
नहीं, आपको क्या दिख रहा है. अच्छा. आपको एनिमल की इमेज दिख रही है, जैसे इंक ब्लॉट मान लीजिए.
अच्छा,
मैंने
अच्छा, यहाँ पे अच्छा, अच्छा.
तो आपको इसमें जो इंक ब्लॉट से इमेज बनी वो आपको एनिमल दिख रहा है या वो आपको इंडिविजुअल दिख रहा है, दो लोग दिख रहे हैं, वैस दिख रहा है, क्या दिख रहा है, तो उसके बेसिस पे आपका पर्सनालिटी असेसमेंट जो है,
इमेजिनेटिव आपका
जो भी आपका है उसके बेसिस पे आपका पर्सनालिटी असेसमेंट जो है वो किया जाता है.
अच्छा, बिल्कुल मैम. चलते चलते एक क्वेश्चन जो मेरे माइंड में आ रहा है, बिहेवियरल इशू की हम बात करते हैं, साइकोलॉजी से जुड़े हुए,
बहुत इंपॉर्टेंट होता
है, उस पर भी थोड़ी सी जो है हम चलते चलते चाहूंगी कि
देखिए जब हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकल स्टडीज की या कोई भी साइकोलॉजी के लिए काउंसलिंग के लिए किसी काउंसलर के पास आता है तो बहुत सारे, जैसे हम किसी से भी डाटा कलेक्ट करते हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट लें. हम पहले इंडिविजुअल को बता दें कि देखिए हम डिप्रेशन की स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग डिप्रेशन वाले लोगों को स्टडी कर रहे हैं, तो इसके लिए आपका कॉन्सेंट चाहिए. वेदर यू पार्टिसिपेट, डू यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन द स्टडी और यू डोंट वॉन्ट टू. अगर आप नहीं करना चाहते तो ठीक है, तो इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट इज नेसेसरी. कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी आप मुझे बताएंगे वो साइकोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी बनती है, वो किसी से शेयर नहीं करेगा. डीब्रीफिंग, डीब्रीफिंग का मतलब है आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि रिसर्च क्यों हो रही है, ये प्रॉब्लम क्यों है, किस तरह से हम आपको पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये मतलब है, इसलिए हम इसे कंडक्ट कर रहे हैं. राइट टू विड्रॉ, जब किसी इंडिविजुअल का मन करे कि मुझे इस स्टडी का पार्टिसिपेट नहीं करना, आई वॉन्ट टू विड्रॉ, तो दी पर्सन हैज दी राइट टू विड्रॉ एनी टाइम व्हेन एवर ही और शी लाइक्स. और फिर लास्ट आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब है कि रिसर्चर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है कि वो किसी भी तरह से जो इंडिविजुअल है उसको हार्म नहीं करेगा, फिजिकली या मेंटली किसी भी तरह से.